मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 14 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक छोटे से उदाहरण से करना चाहूंगा और मुझे यकीन है कि जैसे ही मेरा यह उदाहरण समाप्त होगा आप समझ जाएंगे कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं और साथ ही यह भी समझ जाएंगे कि मैं इस विषय पर बात क्यों कर रहा हूं। तो आइए पहले इसी का ट्रायल कर लेते हैं। मैंने एक बहुत महंगी कार खरीदी। अब मुझे नहीं मालूम है कि महंगी कार कितने कितने की होती है, लेकिन चलिए मैंने 50 लाख रुपए की एक बिल्कुल न्यू ब्रांड कार खरीदी, बहुत महंगी कार खरीदी और उस कार को ला करके मैंने अपने गैरेज में खड़ा कर दिया। 5-7, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक मैंने वो कार चलाई है। सुबह जब मैं स्टार्ट करता था तो बड़े खूबसूरत तरीके से वो स्टार्ट होती थी, चलाने में भी मजा आता था और जब मैं उस कार पर बैठकर अपनी कॉलोनी से निकलता था और बाद में शहर में घूमता था और या किसी के घर के या दुकान के सामने जब खड़ी करता था तो बड़ी शान से मैं उस कार से उतरता था और बैठे बैठे कहीं ना कहीं मैं बड़ा प्राउड फील करता था कि यार ये देखेगा और समझेगा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं क्योंकि मैं इतनी महंगी गाड़ी चला रहा हूं, राइट? एक दिन हुआ ये कि सुबह गैरेज खोलकर जब मैं अपनी कार स्टार्ट करने लगा तो मेरी कार स्टार्ट नहीं हुई। मैं चाबी लगा रहा हूं, कोई हलचल नहीं, कार ज्यों की त्यों खड़ी है। परेशान होता हूं, अपने आप को कोसता हूं, कभी आप यूं कह लीजिए कि जो कार बनाने वाली कंपनी है उसके खिलाफ मन में दुर्भावना पैदा होती है, फिर एजेंसी के से नाराजगी होती है। लेकिन चलिए अंततः फिर मैं एजेंसी को फोन लगाता हूं और कहता हूं कि भाई इतनी नई कार और इतनी महंगी कार है, 1 महीने और हुए ही 1 महीना ही हुआ है और मुश्किल से ये कार 500 किलोमीटर चली है और मैं अब चला रहा हूं तो ये कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ये क्या हो गया कार को? वो इत्मीनान से मेरी बात सुनता है और मुझे सांत्वना देता है कि सर आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमारा अभी मैकेनिक तुरंत आपके पास पहुंच रहा है और वो देख लेगा। उनका मैकेनिक आता है, वो बोनट खोलता है, बोनट खोलने के बाद जो भी उसे समझ में आता है वो मतलब मुश्किल से वो 10 मिनट लगाता है और कहता है कि सर अब कार स्टार्ट कीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं, चाबी घुमाता हूं तो मेरी कार स्टार्ट हो जाती है। मुझे बड़ी उत्सुकता होती है कि 10 मिनट में ये कैसे स्टार्ट हो गई, इसने आखिर में क्या किया और बेहतर है कि मैं भी जान लूं कि अगर आगे कभी ऐसा संकट आए तो मैं उसे खुद सुलझा लूं। तो मैं उससे पूछता हूं कि ये कार कैसे स्टार्ट हुई, क्या किया तुमने? वो कहता है कि नहीं सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो पेट्रोल इसमें डला होगा वो शायद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होगा या उसमें कुछ तिनका उनका रहा होगा, तो वो जो छोटा सा तिनका था वो कार्बोरेटर में आ गया और इसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं पूछता हूं कि कार्बोरेटर में उस तिनके के आ जाने से क्या हुआ? तो वो कहता है कि नहीं दरअसल बात यह है कि वो कार्बोरेटर में चूंकि वो तिनका फंस गया था तो तिनका के फंसने के कारण कार्बोरेटर से इंजन में जो तेल पहुंचना चाहिए था, जो एनर्जी पहुंचनी चाहिए थी, वो इंजन तक नहीं पहुंच पाई और जब इंजन तक एनर्जी ही नहीं पहुंच रही है तो सीधी सी बात है कि इंजन काम नहीं करेगा। मैंने और कुछ भी नहीं किया, फूंक मार करके उस तिनके को वहां से हटा दिया, वो लाइन क्लियर हो गई और इसके बाद तेल का जो प्रवाह है इंजन तक क्लियर हो गया, साफ हो गया, पहुंचने लगा और जैसे ही कार स्टार्ट की गई कार स्टार्ट हो गई। मैं मनी मन मुस्कुराता हूं और धन्यवाद देता हूं, उसे इनाम के तौर पर एक छोटी सी टिप्स भी देता हूं और फिर उसी तरह से शान से कार निकालता हूं और फिर अपने गंतव्य की ओर बैठकर उसमें चला जाता हूं। बस मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण है, मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी बात को कितनी स्पष्टता से आपके सामने रख सका हूं। थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए, अगर टाइम अधिक लग रहा हो तो कोई हर्ज नहीं, थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर दीजिए, अपनी तरफ से विचार कीजिए कि इससे आफ्टर ऑल हमें क्या समझ में आ रहा है और जो समझ में आ रहा है, जो विषय हमारे दिमाग में कौंध रहा है, उस विषय का चयन आज क्यों किया गया, आपको समझ में आ जाएगा। उतनी जल्दी सरेंडर मत कीजिए। देखिए, हम लोगों की आदत है कि जब हमें कोई बात तुरंत समझ में नहीं आती तो हम धैर्य नहीं रख पाते हैं और जल्दी से सरेंडर कर देते हैं, या तो हम गूगल महोदय से सहारा पूछने लगते हैं या किसी दूसरे से पूछने लगते हैं, या फिर सोचते हैं कि छोड़ो यार इसकी जरूरत ही क्या है। और मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो अवसर होते हैं जब हमारे दिमाग को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। जब तक हम अपने दिमाग को सोचने का अवसर नहीं देंगे, उसकी फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी, वह उपजाऊ नहीं बन सकेगा। और हमें चाहिए कि बढ़ती हुई उम्र के साथ लगातार हम अपने इस एक्सरसाइज को बढ़ाते रहे, ताकि हमारी जो और हमारा जो उपजाऊपना है दिमाग का वो बना रहे। तो मित्रों ये काम कीजिए, मैं तो आपको बताऊंगा ही, लीजिए मैं आपको बता भी देता हूं। मित्रों आज 14 अगस्त है, कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्व के तंत्र को प्राप्त कर लेने का दिवस। निश्चित रूप से जब हम स्व के तंत्र की बात करते हैं तो उसमें हमारी अपनी एक राजनीतिक आजादी होती है, कि मतलब हम खुद अपना शासन करेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमें वह अधिकार हमने हासिल कर लिया था, हमें किसी ने दिया नहीं था, यह है स्वतंत्रता दिवस। लेकिन मित्रों स्व के तंत्र का एक अर्थ यह भी है कि हम अपने ही तंत्र को हासिल कर सकें, यानी कि हम जो हैं, हम जो कर सकते हैं, हम उसे प्राप्त करें। और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि हमको किसी दूसरे ने आंतरिक रूप से गुलाम नहीं बनाया है। देखिए बाहरी रूप से तो कोई हमें गुलाम बना सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। आप मेरे शरीर को कैद कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को कैद नहीं कर सकते, मेरी चेतना को कैद नहीं कर सकते। और इस बात के प्रमाण है हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप की, हिटलर के जो यातना शिविर थे, उस यातना शिविर से बाद में जो बचकर निकले हैं, जो बहुत बड़े बड़े राइटर हुए हैं, उन्होंने सीधी सी ये बात कही कि हिटलर के यातना शिविर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मेरी आत्मा या मेरी चेतना को कैद कर सके। नो डाउट कि मेरा शरीर उनकी कैद में था। स्टीफन हॉकिंग्स ने भी यही कहा कि मेरा जो शरीर है वो नो डाउट कि इस व्हील चेयर में कैद है, लेकिन जो मेरी चेतना है वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करती रहती है। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम आपने सुना है, जिनका निधन कुछ समय पहले ही हुआ था, जो आज के युग के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। तो मित्रों अब आप शायद समझ गए होंगे कि मैं बात किस पर करने जा रहा हूं। मैं अब बेसिकली आंतरिक स्वतंत्रता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, और आंतरिक स्वतंत्रता इस विषय को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अब आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि इसका संबंध उस कार वाले उदाहरण से किस तरीके से है, उसका क्या मतलब हुआ। फिर जब आप सोचेंगे तो यहां भी आप अर्थ निकाल लेंगे, और मैं चाहता हूं कि आपकी कैपेसिटी इतनी डेवलप हो जाए कि आप चीजों के अर्थ निकालने लगें, क्योंकि जब आप इस तरह से चीजों के अर्थ निकालने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ लेसन ही लेसन बिखरे पड़े हैं, पाठ ही पाठ है, शिक्षा ही शिक्षा है। हर कोई आपको एक शिक्षक नजर आएगा, कोई भी घटना, कोई भी वाक्य, कोई भी किताब, कोई भी दृश्य, कोई भी व्यक्ति, हर जगह आपको कोई न कोई सीख मिलेगी। और कल्पना करके देखिए, हम सारी चीजों को तो नहीं सीख पाते, लेकिन उसमें से अगर अपने जरूरत की कुछ चीजें हमने सीख ली तो हमारे पास उस सीखे हुए का कितना बड़ा, कितना समृद्ध भंडार होगा, हमारे ज्ञान का भंडार और हमारे व्यक्तित्व का भंडार कितना विशाल होगा, कितना विराट होगा। देखिए यहां जो मैंने एक महंगे कार की जो उपमा दी थी, महंगे कार का मतलब है कि मैं बहुत बड़े पद पर हूं, मैं बहुत धनी हूं, मैं बहुत योग्य हूं, मैं बहुत फेमस हूं, जो भी आप कह लीजिए वो है बहुत महंगी कार। ठीक है, जब मैं चलता हूं और शान के साथ चलता हूं तो ये क्या है, ये मेरा ईगो है। मैं बेसिकली कार में नहीं चल रहा हूं, मैं अपने ईगो में चल रहा हूं। मैं जब उतरता हूं तो शान से उतरता हूं, मैं जब कार चलाता हूं तो इधर उधर देखता रहता हूं कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, और जब मुझे पता लगता है कि नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मुझे निराशा होती है, फिर मुझे वो कार अर्थहीन मालूम पड़ने लगती है, क्योंकि अगर कोई दूसरा देख ही नहीं रहा है तो फिर मेरे महंगे कार का क्या अर्थ है। ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ कि उस कार ने स्टार्ट होने से मना कर दिया, और उसका कारण यह था कि एनर्जी इंजन तक नहीं पहुंच पा रही थी, और उस एनर्जी को रोकने का काम एक तुच्छ तिनका कर रहा था जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने उसकी पूरी एनर्जी को खत्म कर दिया था। दोस्तों ये जो तुच्छ तिनका है, ये मेरा ईगो है, ये मेरा ईगो है। कि जैसे ही हमारे दिमाग में ईगो आता है, मान करके चलिए कि वो ईगो हमारी सारी ऊर्जा को, हमारी सारी क्षमताओं को ब्लॉक कर देता है, फिर हम चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, मान करके चलिए कि मैं अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, और बड़े पद पर रहने के बाद, धनी होने के बाद और सेलिब्रिटी बनने के बाद भी जो मैं कर रहा हूं वो मेरे अंदर की ऊर्जा नहीं है, बाहर की वह ऊर्जा है जो लोगों ने मुझ पर थोप दी है। अगर मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं तो वो अधिकार मुझे सरकार ने दिए हैं, मैं दूसरे की रोशनी से प्रकाशित हो रहा हूं, और जिस दिन वह कुर्सी मुझसे छिन जाएगी सारी की सारी रोशनी बुझ जाएगी, मानो कि जलता हुआ अंगारा राख में तब्दील हो गया। तो फिर मेरी अपनी रोशनी कहां है? मेरी रोशनी मुझे तब मिलेगी जब ये तिनका खत्म हो जाएगा, जब मैं खुद को अपने इस तिनके से मुक्त करूंगा, और जैसे ही मैं अपने आप को अपने इस ईगो के तिनके से मुक्त कर लूंगा, मैं अपने यानी कि स्व के तंत्र को हासिल कर लूंगा, और वही मेरे लिए सच्चा स्वतंत्रता दिवस होगा, जिसे मैंने नाम दिया है आंतरिक स्वतंत्रता। तो मित्रों, पिछले सप्ताह के लगभग अंत में हम लोग ईगो पर बात कर रहे थे, और ईगो पर बहुत से आप लोगों के मेल भी मिले हैं, आगे भी हम लोग इस विषय पर बात करते रहेंगे। तो अब चूंकि कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये मेरी बधाई और शुभकामनाएं मेरे सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से है, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से है, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से है, और मेरी ओर से भी है। और मित्रों, इसी के साथ ही एक सूचना और कि चूंकि कल गजेटेड हॉलीडे है, हमारा नेशनल हॉलीडे है, इसलिए कल आपसे मैं लाइफ मैनेजमेंट के तहत बात करने से वंचित हो जाऊंगा, लेकिन फिर हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे और इसे एंजॉय करेंगे। तो मित्रों, फिर से एक बार शुभकामनाएं और बधाइयां स्वीकार करें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।